तुम कहती हो तो मान लेते हैं कि तुम्हारे मन में उन्हें लेकर कोई एहसास नहीं, पर इस बात को तो तुम भी नहीं झुठला सकती कि आज भी वो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा उनसे, फिर भी वो इफेक्ट करते हैं तुम्हें। उनकी मौजूदगी, बातों का गहरा असर होता है तुम पर। अगर वो वाकई में तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते होते तो उनकी मौजूदगी इस कदर प्रभावित नहीं करती तुम्हें। अगर सच में उन्हें लेकर तुम्हारे मन में कोई अलग भावना नहीं होती तो तुम उनसे दूर नहीं भाग रही होती। जैसे उस दिन अक्षय जी संग तुम्हारा व्यवहार था, वैसा ही माधव जी संग भी होता, पर उनकी उपस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही थी। इसके आगे हम बस तुम्हें इतना कहेंगे कि जिंदगी में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर मिले तो उन्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहिए। माधव जी को हम तो इतना नहीं जानते, पर अक्षय जी से बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है। एक नाकामयाब शादी का बोझ उनके कंधों पर भी है। स्वभाव और व्यवहार से हमें तो बहुत अच्छे लगे। वो समझदार भी हैं और जिम्मेदार भी। आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के जल्दी से मिलते नहीं हैं। तुम भी तन्हा हो और वो भी अकेले हैं। अगर एक दूसरे का सहारा बन जाओ तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। शायद कुछ जानती थी आहाना, जिसे राधिका अनजान थी। आहाना की ये बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। माथे पर कुछ रेखाएं खिंच गईं। जैसे ही वो चुप रही, राधिका ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, तुम कहना क्या चाहती हो? दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ना उन्होंने तुम्हारी ओर। स्वीकार कर लो उनकी दोस्ती। दिल साफ है उनका और उनकी सच्चाई उनकी आंखों में नजर आती है। इज्जत करते हैं वो तुम्हारी। उनसे दोस्ती कर लोगी तो उनका दिल भी रह जाएगा, तुम्हें एक सहारा मिल जाएगा। दोनों एक जैसी स्थितियों से गुजरे हो तो एक दूसरे को समझने में भी आसानी होगी और पुरानी जितनी बुरी यादें हैं उनकी जगह कुछ अच्छी यादें ले लेंगी। पुराने टूटे रिश्ते के कारण ये जो अजीब सी तनावपूर्ण स्थिति बन गई है, नए रिश्ते के जुड़ने से इसमें भी बदलाव आएगा और तुम भी उनके साथ सहज हो जाओगी। इसके अलावा दोस्ती करने में बुराई ही क्या है, वो भी तब जब तुम जानती हो कि सामने वाला एक नेक दिल का समझदार इंसान है। तुम्हें लगता है कि पहले हमारा जो रिश्ता रहा और जिस मोड़ पर हम अभी खड़े हैं, हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? और अगर बन भी गए तो उस दोस्ती को निभा सकेंगे? राधिका चेहरे पर गंभीर भाव लिए बौं उछकाते हुए उसे देखने लगी। उसका ये सवाल सुनकर आहाना ने बेपरवाही से मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं बन सकते दोस्त? तुम्ही ने तो कहा था कि अब तुम्हारे दिल में उन्हें लेकर कोई एहसास नहीं। वो एक अच्छे इंसान है, ये भी तुम्ही ने कहा था। तुम्हें अब बीती बातों को लेकर उनसे कोई नाराजगी या शिकायत भी नहीं। फिर दोस्ती करने में बुराई ही क्या है? तुम्हारे और माधव जी के बीच भले कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी एक स्ट्रांग बॉन्ड है। कुछ है जो तुम दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इस रिश्ते को नाम देना गलत तो नहीं? तुम मानो ना मानो, पर तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर माधव जी ने तो ये साबित कर दिया है कि तुम उनकी जिंदगी में एक खास जगह रखती हो, मायने रखती हो उनके लिए। शायद सालों पहले तुमसे रिश्ता ना होने का अफसोस है उन्हें, और इस बार जब वो तुमसे मिले हैं तो फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहते। इसलिए बीती बातें भूलकर तुम्हारी और दोस्ती के हाथ बढ़ाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए अपने और तुम्हारे बीच की स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी बस दोस्ती ही तो करनी है, उनसे शादी तो नहीं करनी, फिर इतना सोचना क्यों? आहाना के इस जवाब ने राधिका को निशब्द कर दिया था। बहुत कुछ चल रहा था उसके मन में, पर कैसे कहे और कैसे समझाए आहाना को अपनी बात, अपने दिल की दुविधा से कैसे रूबरू करवाए उसे, यही समझ नहीं आ रहा था उसे। इसीलिए वो चुप ही रह गई। इतने में लंच ब्रेक भी खत्म हो गया तो राधिका उठकर अपनी क्लास के लिए चली गई। आहाना का ये पीरियड फ्री था तो उसने कुछ सोचते हुए अक्षय को फोन लगा दिया। हेलो, आज हमारी प्यारी धर्मपत्नी जी ने इस वक्त अपने इस बेचारे पति को कैसे याद कर लिया? कॉल रिसीव करते ही अक्षय की नौटंकी शुरू हो चुकी थी और उसने मुस्कुराते हुए आहाना को छेड़ा, जो उसका मनपसंद काम था। पर आहाना, जो पहले से काफी परेशान थी, वो अक्षय की बात सुनकर खींच उठी। अक्षय जी, नाटक नहीं कीजिए, हमने आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। उसकी आवाज में झलकती परेशानी को महसूस करते हुए अक्षय के मुस्कुराते लब सिमट गए और चेहरे पर संजीदगी के भाव उभर आए। अच्छा, बताइए, क्या बात करनी है आपको मुझसे, जिसके लिए आपने इस वक्त मुझे फ़ोन किया और इतनी सीरियस लग रही हैं? वो हमने अभी राधिका से माधव जी के बारे में बात की। क्या बात की आपने? हमने पूछा माधव जी के बारे में। आपका अंदाज़ा सही था। पहले राधिका जी की माधव जी से शादी होने वाली थी, पर किन्हीं कारणों से हो नहीं सकी। राधिका उस वक्त पसंद करने लगी थी उन्हें, पर उसका रिश्ता कहीं और हो गया। सारी बात तो हमें नहीं पता, पर हमें लगता है कि राधिका के मन में अभी भी माधव जी के लिए भावनाएं हैं, पर वो मान नहीं रही। और उस दिन जिस तरह से माधव जी उसे देख रहे थे, हमें लगता है कि उनके मन में भी राधिका को लेकर कोमल भाव मौजूद हैं। वो शायद राधिका को खोना नहीं चाहते, उसके और अपने बीच के रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इसीलिए हमने राधिका को कहा कि उनसे दोस्ती कर ले। अगर उसके मन में उनके लिए कोई भावना नहीं तो दोस्ती करने से एतराज भी नहीं होना चाहिए। सही किया ना हमने? आहाना ने संक्षेप में सारी बातों से बताई और चेहरे पर उलझन के भाव लिए परेशान सी उसके जवाब का इंतजार करने लगी। आपने इतना सब सोच लिया, कर लिया और अब सवाल मुझसे कर रही हैं? अक्षय ने शब्दों से अपनी नाराजगी जाहिर की, जैसे आहाना की इस बात से बहुत निराश हुआ हो वो, उसके मन को ठेस पहुंची हो। आहाना जो पहले से काफी परेशान थी, अब की बार झुंझला गई। अक्षय जी, आहाना ने नाराजगी से गालों को फुलाया और उसकी इस अदा पर अक्षय के लब बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठे। अच्छा, नहीं करता आपको तंग, बताइए आपने क्या सोचकर राधिका को कहा माधव की दोस्ती एक्सेप्ट करने को? शरारत छोड़कर अब अक्षय गंभीर हो गया, आखिर अपनी जान की नाराजगी जो दूर करनी थी उसे। आहाना ने मुंह बनाया और विचलित स्वर में जवाब दिया, आप तो जानते हैं राधिका की पहली शादी में उसे बहुत दुख मिला, ऐसा ही माधव जी के साथ भी हुआ। अभी दोनों अकेले हैं और हमें लग रहा है कि उन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर कुछ कोमल एहसास मौजूद हैं। तभी माधव जी ने राधिका को दोस्ती करने कहा। अगर राधिका उसने दोस्ती कर लेती है तो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, साथ में वक्त बिताएंगे, शायद तब वो अपने मन के भावनाओं को समझ सकें और उसे एक्सेप्ट कर सकें। अगर आगे चलकर दोनों एक साथ हो जाते हैं तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो इस दोस्ती से कम उनका रिश्ता ही सुधर जाएगा। बहुत अच्छा सोचा है आपने और बहुत अच्छा किया है। मुझे भी उनका व्यवहार देखकर लग रहा था कि दोनों के मन में कुछ है, बस उन्हें एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताने की जरूरत है। अगर दोनों साथ हो जाते हैं तो दोनों की ही जिंदगी संवर जाएगी। अक्षय ने उसके फैसले में उसका समर्थन किया तो आहाना की चिंता कुछ कम हुई, पर अब भी माथे पर कुछ सिलवटें मौजूद थीं। पर हमें नहीं पता कि राधिका हमारी बात मानेगी भी या नहीं, राधिका ने मायूसी भरे स्वर में कहा। अपनी बीवी की मासूमियत देखकर अक्षय के लब एक बार फिर मुस्कुरा उठे और वो कोमल स्वर में उसे समझाने लगा, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की इतना ही बहुत है, जो उनकी किस्मत में होगा वही होगा। अगर भगवान ने उनका साथ लिखा है तो वही उन्हें मिलवाने का कोई ना कोई जरिया भी ढूंढ लेंगे, इसीलिए आप इस बारे में सोचकर खुद को परेशान मत कीजिए, उदासी को त्याग दीजिए।
आपने अपनी तरह से जो किया बिल्कुल सही किया, अब बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए, जो उन दोनों के लिए सही होगा वो उन्हें मिल जाएगा, जैसे मुझे आप मिल गईं। अंत में अक्षय ने शरारत भरे शब्दों से आहाना को छेड़ा और फलस्वरूप उसके गालों पर हया की लाली बिखर गई। संकोच से उसने अपनी पलकें झुका ली। फिर से शर्माने लगी ना आप, कोई आपको देखकर कहेगा नहीं कि हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और साथ में हमारे दो दो बच्चे भी हैं। आज तो आज भी मुझसे ऐसे ही शर्माती हैं जैसे शादी की पहली रात शर्मा रही थी। एक बार फिर अक्षय ने शब्दों से उसे छेड़ा था और उसके शब्दों का असर भी हुआ था। अक्षय के साथ बिताई वो रात आहाना के आंखों के सामने उभर आई थी और पूरा चेहरा कश्मीरी सेब जैसे लाल हो गया था। हम नहीं शर्मा रहे, आहाना ने तुनकते हुए कहा और अपनी नाराजगी के पीछे अपनी शर्म को छुपाने की नाकाम सी कोशिश करते हुए आगे बोली, जा रहे हैं हम अपनी क्लास में, आप भी हमें छेड़ने के बहाने ढूंढने की जगह अपने काम पर ध्यान लगाइए और आज वक्त पर घर आ जाइएगा। अगर आपके बच्चे आपके देर से आने पर नाराज हुए तो हम नहीं संभालेंगे उन्हें। लो भाई, आहाना ने भी बच्चों का नाम लेकर उसे धमका भी दिया था। अक्षय ने उसे छेड़ा और आहाना ने भी उससे खूब बदला लिया। अक्षय उसका ये अंदाज देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका, जबकि आहाना ने नाक मुंह से कोड़ते हुए कॉल कट कर दी।